एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सुनने में शायद थोड़ा पुराना लगे, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, प्राचीन युद्ध।
हाँ बिल्कुल, और हम सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं दोहराएंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि हजारों साल पहले लड़ाई असल में होती कैसी थी।
सही।
क्या सोचते थे वो लोग जो लड़ते थे, समाज पर उसका क्या असर पड़ता था, और सोचिए एक आम सैनिक के लिए वो अनुभव कैसा रहा होगा।
हाँ, मतलब ये सिर्फ तलवार चलाने या तीर चलाने की बात तो नहीं थी।
नहीं नहीं, मामला कहीं ज्यादा गहरा था।
बिल्कुल, और इसी गहरी समझ के लिए हम जाने माने इतिहासकार और लेखक हैरी साइडबॉटम उनके काम को आधार बना रहे हैं। खास तौर पर उनकी किताब एंशिएंट वॉरफेयर, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उनका जो ज्यादा बड़ा काम है एंशिएंट वॉरफेयर, उससे मिली जानकारियों पर बात करेंगे।
हाँ, और उनका काम इसलिए खास है क्योंकि वो हमें फिल्मों वाले युद्ध से, वो जो रोमांटिक तस्वीर होती है ना, उससे हटाकर एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा कह सकते हैं इंसानी तस्वीर दिखाते हैं।
सही, और ये समझना आज भी जरूरी है क्योंकि देखिए संघर्ष तो आज भी दुनिया का हिस्सा है।
बिल्कुल, प्राचीन युद्ध को समझने से शायद हमें आज के संघर्षों की जड़ों को, लीडरशिप का क्या मतलब होता है, और समाज पर युद्ध के असर को शायद बेहतर ढंग से देखने में मदद मिले।
तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले ये हैरी साइडबॉटम है कौन, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं।
हाँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास पढ़ाते हैं और रोमन साम्राज्य में इनकी खास विशेषज्ञता है, खासकर तीसरी सदी का जो संकट काल था।
अच्छा, वो दौर जब रोम लगातार युद्धों में फंसा हुआ था।
हाँ बिल्कुल, वो एक निरंतर युद्ध का दौर था।
और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि साइडबॉटम सिर्फ एक गंभीर अकादमिक रिसर्चर ही नहीं है।
नहीं, वो बेस्ट सेलिंग ऐतिहासिक नॉवेल भी लिखते हैं। उनकी एक सीरीज है वॉरियर ऑफ रोम, वो काफी मशहूर है। उसमें उन्होंने रोमन सैनिक की जिंदगी को बड़े करीब से और बड़े सजीव ढंग से दिखाया है।
सही कहा, और यही चीज, मतलब ये दोहरा दृष्टिकोण उन्हें काफी खास बनाता है,
है ना?
एक तरफ वो पुराने दस्तावेजों और खुदाई से मिले सबूतों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं।
हाँ।
तो दूसरी तरफ एक नॉवल लिखने वाले की तरह वो हमें महसूस करा सकते हैं कि उस जमाने में युद्ध का अनुभव कैसा रहा होगा, वो डर, शोर, थकान,
सब कुछ।
हाँ,
मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि वो एहसास, वो फीलिंग्स भी।
अब आते हैं साइडबॉटम के मुख्य तर्क पर। उनका नजरिया क्या है प्राचीन युद्ध को लेकर?
देखिए, उनका सबसे बड़ा तर्क या कह ले कि नजरिया ये है कि प्राचीन युद्ध सिर्फ हथियार चलाने या रणनीति बनाने का मामला नहीं था।
बिल्कुल नहीं,
ये उस समाज की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा था। युद्ध ने समाज को बनाया भी और समाज से बना भी।
अच्छा, मतलब ये एक दो तरफा रिश्ता था।
हाँ, वो हमें उस रोमांटिक सोच से दूर ले जाते हैं जो हम अक्सर फिल्मों या कहानियों में देखते हैं। युद्ध की एक ज्यादा सच्ची और अक्सर ज्यादा क्रूर तस्वीर दिखाते हैं।
हाँ, वो असल में ये पूछते हैं कि वीर गाथाओं और नक्शों से परे प्राचीन युद्ध असल में था कैसा, और जवाब है ज्यादा उलझा हुआ, ज्यादा बेरहम, और हर संस्कृति के लिए उसके मायने भी अलग थे।
इसीलिए वो सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों का जिक्र नहीं करते बल्कि कुछ बुनियादी सवाल उठाते हैं, जैसे लोग लड़े क्यों, असली वजह क्या थी,
कौन थे लड़ने वाले, मतलब सिर्फ सैनिक या?
हाँ, और कैसे लड़े, कब लड़े, कहाँ लड़े, लड़ाई का असल अनुभव क्या था, और समाज पर इसका क्या असर हुआ। ये एक पूरी होलिस्टिक तस्वीर देखने की कोशिश है।
और उनका दायरा भी काफी बड़ा है, सिर्फ यूनान रोम नहीं।
नहीं नहीं, मेसोपोटामिया से लेकर पश्चिमी रोमन साम्राज्य के गिरने तक, यूनान, रोम, सेल्ट, जर्मन, फारसी, यहाँ तक कि भारतीय और चीनी सभ्यताओं के युद्ध तरीकों पर भी बात करते हैं।
अच्छा।
हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर युद्ध की तकनीकें, रणनीतियां और सामाजिक असर कितने अलग थे।
और एक और दिलचस्प बात जो उनके काम, खासकर उनकी विस्तृत किताब एंशिएंट वॉरफेयर में उभरती है, वो ये कि युद्ध कई बार नई टेक्नोलॉजी और सामाजिक बदलाव का इंजन भी बना।
हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है पर सच है।
तो चलिए इन सवालों में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। पहला सवाल, लोग लड़ते क्यों थे?
हाँ, अक्सर हम सोचते हैं बस जमीन कब्जाने के लिए, लेकिन साइडबॉटम कहते हैं वजहें और भी थीं और ज्यादा जटिल थीं।
जैसे?
जैसे यूनानियों में एगोन का कॉन्सेप्ट था, यानी मुकाबला, प्रतिस्पर्धा। युद्ध उनके लिए अपनी इज्जत, टीमें और नाम क्लियोस कमाने का जरिया था, अपनी बहादुरी साबित करने का मौका, और समाज में बेइज्जती का डर, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था।
अच्छा, मतलब सम्मान और शर्मिंदगी बहुत मायने रखती थी।
बहुत। और रोमनों का देखिए, उनके पास बेलम यूस्टम यानी न्यायपूर्ण युद्ध का आइडिया था।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
हालांकि कई बार ये सिर्फ उनके हमले और विस्तार को सही ठहराने का एक तरीका होता था, मतलब एक तरह का नैतिक जामा पहनाना।
और पैसा, लूटपाट का क्या रोल था?
अरे बहुत बड़ा रोल। युद्ध बहुत फायदेमंद हो सकता था। लूट, सोना चांदी, जानवर और सबसे बढ़कर गुलाम, ये अक्सर लड़ाई का मुख्य मकसद होता था।
गुलाम?
हाँ, गुलाम अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे और युद्ध से गुलाम मिलते थे, इसी लूट से सेनाओं का खर्चा चलता था। ये एक तरह का चक्र था।
और कभी कभी तो सिर्फ डर के मारे भी हमला कर देते थे।
पहले ही हम कर दें, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिसे कहते हैं।
दिलचस्प है कि वजहें कितनी अलग अलग थीं। सम्मान, धर्म, पैसा, डर।
बिल्कुल। अब सवाल है लड़ता कौन था। यहाँ भी यूनानी और रोमन मॉडल काफी अलग थे।
हाँ, यूनानी होपलाइट के बारे में बताइए।
होपलाइट आमतौर पर एक नागरिक सैनिक होता था, कोई किसान या कारीगर, जो अपने शहर यानी पोलिस के लिए लड़ता था। फौज में सेवा करना उसके नागरिक अधिकारों और समाज में उसकी जगह से जुड़ा हुआ था।
तो वो फुल टाइम सैनिक नहीं थे?
नहीं, ज्यादातर नहीं। और उनकी लड़ने की तरकीब, वो होपलाइट फैलैंक्स यानी ढाल और भालों की वो घनी दीवार, वो एक तरह से नागरिकों की बराबरी और मिलकर काम करने के आदर्श को दिखाती थी।
वही रोमन लीजनरी का मामला लगता है ना?
हाँ, वो धीरे धीरे बदले। शुरू में वो भी नागरिक सैनिक जैसे थे, पर फिर वो लंबे समय तक सेवा करने वाले बेहद ट्रेन प्रोफेशनल सैनिक बन गए।
और इसी प्रोफेशनलिज्म ने रोम को
लगातार लड़ाइयां लड़ने और इतना बड़ा साम्राज्य बनाने की ताकत दी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ, वो जो फौजी जनरल थे वो बहुत ताकतवर हो गए।
हाँ, और कभी कभी वो राजनीति में भी दखल देने लगे।
बिल्कुल, वो खुद ही सत्ता के खिलाड़ी बन गए। ये एक तरह का खतरा भी था।
और सिर्फ ये भारी भरकम सैनिक ही नहीं थे मैदान में?
नहीं नहीं, हल्के हथियारों वाले फुर्तीले सैनिक, घुड़सवार, किराए के सैनिक, इनकी भी अपनी अहमियत थी, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
और जिन्हें यूनानी और रोमन बर्बर कहते थे, जैसे सेल्ट या जर्मन कबीले।
हाँ, उनकी लड़ने की अपनी कारगर तकनीकें थीं, जो उनके माहौल के हिसाब से थीं, जैसे छापामार युद्ध करना या घोड़े चलाने में माहिर होना, या उनके हथियार भी कई बार बेहतर होते थे।
अच्छा।
हाँ, धातु के काम में वो कई बार आगे थे, और जब इनका रोमनों और यूनानियों से टकराव हुआ तो दोनों ने एक दूसरे से सीखा भी, नई तरकीबें निकली।
तो हमने देखा कि कौन और क्यों लड़ रहा था, पर असल लड़ाई मैदान में दिखती कैसी थी, तरीके क्या थे, तकनीकें क्या थीं।
हाँ, यहाँ यूनानी फैलिंग्स और रोमन लीजन का फर्क समझना काफी दिलचस्प है।
फैलिंग्स, जैसा आपने बताया, ढालों और भालों की एक सीधी दीवार थी।
हाँ, उसकी ताकत थी एकजुट होकर आगे बढ़ना और धक्का देना, जिसे ऑथिस्मोस कहते थे। आमने सामने की टक्कर में ये बहुत मजबूत थी।
लेकिन उसकी कमजोरी?
कमजोरी थी कि वो ज्यादा लचीली नहीं थी। किनारों से हमला हो जाए या जमीन उबड़ खाबड़ हो तो उसका फॉर्मेशन टूट जाता था।
जबकि
रोमन लीजन ज्यादा लचीली थी। सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी होती थी, मैनिप्लेज और बाद में कोहोर्ट्स, जो ज्यादा आजादी से मूव कर सकती थीं।
इससे कमांडर को क्या फायदा होता था?
कमांडर को लड़ाई के बीच में रणनीति बदलने, हालात के हिसाब से सैनिकों को इधर उधर भेजने में आसानी होती थी। ये लचीलापन रोम की कामयाबी का एक बड़ा राज था।
पर काफी जोर देते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, संगठन और अनुशासन रोम की पहचान थे।
और एक चीज जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है लॉजिस्टिक्स। सेना का पेट भरना, हथियार पहुंचाना, तनख्वाह देना।
अरे ये तो शायद सबसे बड़ी चुनौती थी। साइड बॉटम इसे बहुत अहम मानते हैं।
पुराने जमाने में लड़ाई अक्सर मौसम के हिसाब से होती थी।
हाँ, क्योंकि खेती बाड़ी भी देखनी होती थी। सैनिकों को खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, ये कमांडर की सबसे बड़ी सिरदर्द थी। इसी से तय होता था कि हमला कितनी दूर तक और कितने समय तक चलेगा।
लॉजिस्टिक्स अक्सर रणनीति से ज्यादा जरूरी हो जाता था।
और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बड़ी निर्णायक लड़ाइयाँ शायद उतनी आम नहीं थी जितना हम सोचते हैं।
सही कहा, रोजमर्रा का युद्ध शायद छोटी मोटी झड़पें, अचानक हमले, रेड और शहरों की घेराबंदी ज्यादा थी।
और घेराबंदी अक्सर बहुत क्रूर होती थी। हाँ बहुत, शहर हारने पर पूरी आबादी को मार देना या गुलाम बना लेना बहुत आम बात थी। ये आज हमें भयानक लगता है, पर तभी ये युद्ध के नियमों का हिस्सा था।
यहीं पर रोमनों का इंजीनियरिंग कौशल काम आता होगा।
बिल्कुल, घेराबंदी की मशीनें बनाना, सड़कें बनाना ताकि सेना जल्दी पहुंच सके, किले बनाना, ये सब उनकी जीत में बहुत मददगार थे। उनकी इंजीनियरिंग कमाल की थी।
ये बातें एंशिएंट वॉरफेयर में और विस्तार से हैं।
हाँ, और हमें सिर्फ यूनान रोम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरब में भी देखिए।
हाँ, क्या तरीके थे वहाँ?
जैसे फारस ईरान के तीरंदाज और उनकी घुड़सवार सेना बहुत मशहूर थी, भारत में युद्ध हाथियों का इस्तेमाल और किलों की मजबूती अहम थी।
और चीन?
चीन में घेराबंदी के उन्नत तरीके थे, क्रॉसबो एक तरह की शक्तिशाली धनुष का इस्तेमाल होता था, और सुन तुत्ज़ू जैसे रणनीतिकारों के विचार तो आज भी पढ़े जाते हैं।
मतलब दुनिया भर में लड़ने के तरीकों का एक तरह से आदान प्रदान भी चल रहा था।
हाँ बिल्कुल। अब आते हैं सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, लड़ाई का असली अनुभव कैसा था एक आम सैनिक के लिए?
हाँ, साइड बॉटम हमें जनरल के नजरिए से हटाकर जमीन पर खड़े सैनिक की जगह सोचने को कहते हैं।
जरा सोचिए, हर तरफ कान फाड़ देने वाला शोर, लोगों की चीखें, हथियारों की टक्कर, घायलों का कराहना, धूल खून और लाशों का मंजर, पसीने डर और खून की गंध, ये एक तरह का मतलब इंद्रियों पर हमला था, सेंसरी ओवरलोड।
और मानसिक दबाव वो कैसा होता होगा?
जबरदस्त। साइड बॉटम कहते हैं कि लड़ाई अक्सर इस बात से तय नहीं होती थी कि कितने लोग मरे, बल्कि इससे कि किस तरफ के लोगों का हौसला पहले टूटा।
अच्छा।
हिम्मत, अपने साथियों का साथ, कमांडर का सामने मौजूद होना, ये सब बहुत मायने रखता था। मनोबल ही सब कुछ था।
और हाथ से हाथ की लड़ाई, उसकी थकान और खौफ,
हाँ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये वीरता की कहानियों से बिल्कुल अलग युद्ध की एक खुरदरी, बहुत ही असली तस्वीर है और रोमांटिक।
और लड़ाई खत्म होने के बाद क्या होता था?
जीतने वालों के लिए भी काम खत्म नहीं होता था। पहले तो अपने घायलों की देखभाल करनी है, मरे हुए साथियों को दफनाना है, और हाँ लूट का माल इकट्ठा करना, दुश्मन की लाशों से हथियार, कवच, कीमती सामान उतारना, जो कैदी बचे हैं उन्हें जमा करना।
कैदियों का क्या होता था?
उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती थी। अगर कोई बहुत अमीर या बड़ा आदमी है तो शायद फिरौती लेके छोड़ दिया जाए, वरना या तो मार दिए जाते थे या जो सबसे आम था, गुलाम बनाकर बेच दिए जाते थे।
ओहो।
हारने वालों के लिए तो बस दहशत में भागना और जान बचाना होता था, और पीछे से अक्सर घुड़सवार सेना उनका पीछा करके उन्हें मार डालती थी।
बाद में जीत की निशानियां खड़ी की जाती थी।
हाँ, जैसे यूनानी युद्ध के मैदान पर ट्रॉफी ट्रोपेन बनाते थे दुश्मन के हथियारों से, या रोम में जीतने वाले जनरल का वो भव्य विजय जुलूस निकलता था।
ये सब दिखाता है कि युद्ध सिर्फ लड़ना नहीं था, वो समाज और संस्कृति का एक अभिन्न अंग था।
बिल्कुल। तो इन सब बातों से कुछ मुख्य सबक या संदेश क्या निकलते हैं, अगर हम सार निकालने की कोशिश करें?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और जरूरी ये है कि युद्ध एक सांस्कृतिक चीज थी। उसे समझने के लिए उस समाज की सोच, उसके मूल्यों को समझना होगा।
हाँ, जैसे आपने कहा, यूनानियों के लिए इज्जत का सवाल, या रोमनों के लिए वो अनुशासन और संगठन का जुनून।
दूसरा, हिम्मत और हौसले का खेल। लड़ाई असल में इच्छा शक्ति की टक्कर थी, अपने डर पर काबू पाना ही सबसे बड़ी जीत थी।
ये बात शायद आज भी उतनी ही सच है, है ना? चाहे वो युद्ध का मैदान हो या जिंदगी की कोई और चुनौती।
बिल्कुल। तीसरा, हमें अपने आज के नजरिए से, अपने आज के नैतिक चश्मे से अतीत को नहीं आंकना चाहिए।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
उस समय के नियम और नैतिकता अलग थे। घेराबंदी के बाद मारकाट या गुलामी आज हमें भयानक युद्ध अपराध लगते हैं, पर तब ये युद्ध का एक स्वीकृत सामान्य हिस्सा थे। इसे समझे बिना हम इतिहास के साथ न्याय नहीं कर सकते।
चौथा, एक आम सैनिक का अनुभव बड़ी बड़ी रणनीतियों और जनरलों के नामों के पीछे छिपे उस डर, दर्द और थकान को याद रखना जरूरी है। युद्ध का एक मानवीय चेहरा भी होता है जो अक्सर क्रूर होता है।
और पांचवा, जैसा साइड बॉटम अपनी विस्तृत किताब एंशिएंट वॉरफेयर में दिखाते हैं, युद्ध बदलाव का एक इंजन भी था। ये थोड़ा अजीब लगता है पर सच है।
हाँ, इसने नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, जैसे बेहतर हथियार बनाने की होड़, इंजीनियरिंग में तरक्की। इसने नए राजनीतिक सिस्टम बनाए, जैसे बड़े बड़े साम्राज्य, और नई आर्थिक व्यवस्थाओं को भी जन्म दिया, जैसे वो गुलामों पर आधारित अर्थव्यवस्था।
ये एक विरोधाभासी कॉम्प्लेक्स सच है।
बिल्कुल। साइड बॉटम के काम से कुछ विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे उनका ये कहना कि प्राचीन युद्ध को समझने के लिए प्राचीन संस्कृति को समझना जरूरी है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी संघर्ष के पीछे सिर्फ फौरी कारण नहीं होते, बल्कि गहरी सांस्कृतिक जड़ें होती हैं, मान्यताएं होती हैं।
और एक और विचार जो मुझे बहुत असरदार लगा, लड़ाई का असली चेहरा साफ सुथरी योजनाओं का नक्शा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष दुश्मन के भाले के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही आतंक के खिलाफ था।
वाह, ये युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलू को कितनी गहराई से पकड़ता है, वो अंदर की लड़ाई।
हाँ, और वो चेतावनी भी जरूरी है, हमें प्राचीन युद्ध को अपने समय के चश्मे से देखने से सावधान रहना चाहिए।
बिल्कुल, ये हमें इतिहास को उसकी अपनी शर्तों पर समझने की सीख देता है, ना कि अपने आज के सही गलत के पैमानों पर उसे फिट करने की।
अब सवाल ये है कि इन पुरानी बातों का आज क्या मतलब है, क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं आज की दुनिया के लिए?
मुझे लगता है हाँ, काफी कुछ। पहली बात, ये हमें आज के संघर्षों को समझने में मदद करता है, क्यों कुछ झगड़े सालों साल पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। शायद उनकी जड़ें इतिहास में, संस्कृति में या पहचान से जुड़े सवालों में हों जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हों।
सही कहा।
और लीडरशिप के बारे में भी, कैसे एक कमांडर मुश्किल हालात में अपनी टीम का हौसला बनाए रखता है, वो क्या करता है?
हाँ।
कैसे छोटी छोटी यूनिट्स का आपसी भरोसा, वो भाईचारा पूरी सेना की ताकत बनता है। ये बातें सिर्फ फौज के लिए नहीं, किसी भी टीम, ऑफिस या संगठन के लिए काम की हो सकती हैं।
बिल्कुल। एक और अहम बात है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब चीजों को जस का तस मान लेने की बजाय सवाल करना।
हाँ, स्रोतों को परखना।
हाँ,
पुराने जमाने के लेखक अक्सर राजा या अपने देश की बड़ाई में लिखते थे, वो एक तरह का प्रोपेगेंडा होता था।
हाँ,
स्टॉटरडम हमें सिखाते हैं कि कैसे अलग अलग स्रोतों को मिलाकर, उनके पूर्वाग्रहों को समझकर, एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा सच्ची तस्वीर बनाई जाए।
ये हुनर तो आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया में बहुत ही जरूरी है। हर तरफ से जानकारी आ रही है, क्या सच है क्या नहीं।
सही बात है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें युद्ध की असलियत का, उसकी भयावहता का एहसास कराता है।
हाँ, फिल्मों की चमक दमक से परे।
हाँ, संगठित हिंसा की मानवीय कीमत क्या होती है, जाने जाती हैं, जिंदगियां उजड़ती हैं, समाज पर सालों तक गहरा असर पड़ता है। ये हमें शांति की कीमत समझने में मदद करता है।
तो साइड बॉटम के इस विश्लेषण से आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि युद्ध कभी सिर्फ लड़ाई नहीं होता, ये हमेशा समाज का आईना होता है, उसकी अच्छाइयों, बुराइयों, उसके डर और उसकी उम्मीदों का। हमें प्राचीन दुनिया की एक ज्यादा जटिल लेकिन शायद ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है, एक अरोमांटिक तस्वीर।
और मेरे लिए ये प्राचीन लोगों की सोच की गहराई दिखाता है, वो हमसे कितने अलग थे, खासकर हिंसा और नैतिकता के मामले में, लेकिन साथ ही उनकी संगठनात्मक क्षमता, उनकी रणनीतिक सोच और उनकी तकनीकी समझ हैरान करती है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि प्राचीन का मतलब पिछड़ा या सरल नहीं होता।
बिल्कुल नहीं। युद्ध को समझना एक तरह से उस पूरी सभ्यता को, उसकी जटिलताओं को समझना है।
चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आखिर में।
हाँ,
ये जानकर कि प्राचीन युद्ध सिर्फ मारकाट नहीं बल्कि संस्कृति, अर्थव्यवस्था और तकनीक से भी गहराई से जुड़ा था, और उसके अनपेक्षित परिणाम भी होते थे, क्या आज हम संघर्षों को और उनके दूरगामी परिणामों को किसी अलग नजरिए से देख सकते हैं? कुछ सोचने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।